पाप है, सब उनको याद करते हैं। ये तो शिव बाबा है ना, बाप से वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको ही पूजा जाता है। पूजा किसकी होती है? जो प्योरिटी की स्थापना करता है उनकी पूजा होती है। अपना जीवन पवित्र बनाते हैं, दूसरों का जीवन पवित्र बनाने में मदद करते हैं, वही देवताएं बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता, उनकी पूजा होती है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं। संगम युग में तो हो सकता है, लेकिन कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। संगम युग में किसकी मत है? रावण की भी मत है तो राम बाप की भी मत है। दोनों का संगम है, दोनों प्रकार की मत का संगम है। कहाँ? संगम युग में। जो राम की मत पर चलते हैं वो देवता बनेंगे। सुख कहाँ है? कलयुग में है या सतयुग में है या संगम युग में है? संगम युग है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग, ऊंचे से ऊंचा युग। इसमें जो सुख है वो सुख कहीं भी किसी युग में नहीं मिल सकता। लेकिन किनको मिलेगा? शूद्रों को। शूद्रों को नहीं मिलेगा, इसलिए क्या बोला है? श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। ये महावाक्य क्यों बोला? लेकिन ऐसा तो कोई शरीर नहीं है जिसमें बीमारी ना हो। ऐसा कोई शरीर है? बीमारी तो सब शरीरों में है, क्योंकि तामसी शरीर है। लेकिन योग बल से शरीर की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, अनुभूति को अच्छा बनाया जा सकता है, अपनी बात अपनी व्यथा को अपने अंदर ही कंट्रोल करके दूसरों तक फैलाने वाले वो नहीं होंगे। वो अंदर कंट्रोल करके खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। न दुख लेना है न दुख देना है, सुखी ही लेना है और सुखी देना है। तो कलयुगी दुनिया में शूद्रों को सुख कहाँ से आया? कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठे तब ना। जब बाप का परिचय देंगे तब ही तो बात बुद्धि में बैठेगी। ये बाप भी है, यह टीचर भी है और ये सदगुरु भी है, सख्त पाठ बजाने वाला भी है। यह बात बुद्धि में बैठे तब ना। कोई बाप टीचर हो सकता है दुनिया में, लेकिन सदगुरु जरूर दूसरा होता है। और यहाँ क्या विशेष पहचान दी? ये बाप भी वही है, टीचर भी वही है और सदगुरु भी वही है। इनका कोई बाप टीचर नहीं। एक पहचान और, उन बापों के बाप होते हैं। दुनिया में जो भी टीचर्स होते हैं उनके टीचर्स भी होते हैं, और दुनिया में जो भी गुरु होते हैं उनके ऊपर गुरु भी होते हैं। लेकिन इस बाप की पहचान में ये विशेषता बताई गई कि इसका न कोई बाप है न कोई समझाने वाला टीचर है और न कोई इसकी गति सदगति करने वाला कोई दूसरा सदगुरु है। इनका कोई भी बाप टीचर गुरु नहीं। पहले पहले है माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। ये परंपरा भी भक्ति मार्ग में जो पढ़ती है वो कहाँ से पढ़ी? संगम युग से पढ़ी। परमात्मा बाप भी आकर के पहले माता का पाठ बजाते, फिर पिता का पाठ बजाते, टीचर का पाठ बजाते और लास्ट में गुरु सदगुरु का पाठ। ये वंडर है कि यहाँ एक ही बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे से ऊंचा है, तीनों पाठ बजाने वाला भी है वह बाप, और सब बापों से ऊंचा है, सब टीचर से ऊंचा है और सब गुरुओं से भी ऊंचा है। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है स्वर्ग, नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका का स्वांग बनाते हैं, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर कहते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है। सर्व का सदगतिदाता एक ही बाप है, एक ही बात पर समझाना है। बाप आते ही भारत में है तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कौन सा देश? भारत देश। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है तो फिर से प्राचीन होगा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तुमने ही बाप से योग सीखा था, वही राजयोग फिर तुम अब सीख रहे हो। बुद्धि में है कि भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है, जिसके कारण खिंच खिंच करके विदेशी लोग भी भारत में आते हैं। ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हुए हैं, बबूलनाथ का मंदिर भी है। क्या नाम दिया? बबूलनाथ। सबसे बड़ा कांटा कौन सा होता है? बबूल का कांटा माना है, कांटा माना दुख देने वाला। दुख देने वाला कौन सा दुख सबसे बड़ा बताया है? काम विकार का दुख सबसे बड़ा दुख बताया है। आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। आदि में भी दुख देता है, कामी खुद भी दुखी होता है, जिसके साथ काम वासना भोगता है उसे भी दुख देता है, और मध्य में बच्चे की जब पैदाइश होती है, लालना पालना करनी पड़ती है, बुआ छीछी साफ करनी पड़ती है, तब भी दुख होता है। और बच्चा बच्चा तो बिच्छू टिंडन ही पैदा होगा। विकारी सुख जो भोगा जाता है, वो दूसरे को दुख दे करके जो भोगा हुआ सुख है, उससे पैदाइश भी विकारी की ही होगी। दुखदायी संतान पैदा होगी, बिच्छू टिंडन पैदा होंगे, और वो बिच्छू टिंडन जीवन में दुखी ही देते रहे, खुद भी दुखी होंगे, और अंत समय जब होगा तो भी हिलकोरे लेकर शरीर छोड़ना पड़े। देह और देह के सारे संबंधी दुखी हो जाते। तो जिसका आदि दुखी, उसका मध्य और अंत भी दुखी। जिसका जन्म सुख से होगा, उसका मध्य और अंत भी सुख से होगा। तो बोला ये वही राजयोग है जो तुमको पहले प्राचीन में सिखाया था। ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के अनेक नाम रखे हुए हैं, बबूलनाथ। बबूलनाथ क्यों याद आ गया? है बंबई में है। अच्छा, आनंद भाई तो बंबई में नहीं होगा, वो तो आनंद देने वाला है। शिव के अनेक नाम रखे हुए हैं, बबूलनाथ का भी मंदिर है, नाम तो जरूर काम के आधार पर रखे हुए हैं। क्या नाम यादगार मंदिर है? तो यादगार जो भी मंदिर है वो किस आधार पर यादगार है? कोई न कोई काम किया होगा, किसने किसने काम किया होगा? बबूल के कांटों ने। आनंद भाई को बहुत याद आ रहे हैं बबूल के कांटे। कांटों को फूल बनाया है इसलिए बबूलनाथ का मंदिर बनाया, इसलिए कहते हैं बबूलनाथ। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। जरूर बाप ने ऐसा प्रैक्टिकल कर्म किया है जिस कर्म के आधार पर उसका नाम अनेक प्रकार के पड़े हुए। तो पहले पहले बाप का परिचय दो जिस बाप को सब भूले हुए, उसके अनेक प्रकार के नाम हैं, उन नामों का अर्थ समझाओ, किस काम के आधार पर वो नाम पड़े हैं वो बात समझाओ। पहले बाप को जानने सब तो बाप से बुद्धि योग लगे, बाप से सबको वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं जीवन बंध में और पावन देवताएं हैं जीवन मुक्ति में। मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या फर्क हुआ? जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी रहे, माना सुख भोगे लेकिन दुख की अनुभूति न हो। ये अनुभव कहाँ करना है? आगे आने वाली सत्य की दुनिया में। मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव नहीं करना है, आने वाले स्वर्ग में ही सिर्फ स्वर्ग का अनुभव नहीं करना है। यहाँ संगम युग पर जो जितने जास्ती लंबे समय तक मुक्ति और जीवन मुक्ति का बुद्धि से अनुभव करेंगे वो उतने ही अनेक जन्म तक सुखी रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं, सिर्फ लास्ट जन्म में जाके दुखी होते हैं। शूटिंग अभी करनी है, अभी पुरुषार्थ न किया, अलबेलेपन में रहे, माया रावण के चंबे में आते रहे, आपस में ही कान फुर्र अंश करते रहे और बाप से क्लेरिफिकेशन नहीं लिया, वेरिफिकेशन नहीं लिया, तो जन्म जन्मांतर पछताना पड़ेगा, दुखी होते रहेंगे। जिसके लिए गीता में कहा हुआ है कि द्वापर युग में मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जो मूढ़ आत्मा है मुझ बाप को नहीं पहचान पाती, साधारण तन में आए हुए बाप को, वो जन्म जन्म नारकी होने में जाती दुखी होती रहती। हम बाप के बच्चे बने दुख का वर्षा लेने के लिए थोड़े ही बच्चे बने, हमें तो जन्म जन्मांतर का बाप से सुख का वर्षा लेना है। ऐसे नहीं कि 21 जन्म का ही वर्षा लेना है, 21 जन्म के वर्षे के आधार पर ही 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है। जैसे राम की आत्मा सतयुग के आदि संगम युग में ऊंच पद पाती है, त्रेता के आदि पहले जन्म में ऊंच पद पाती है, तो द्वापर में और कलयुग के आदि में भी उसका ऊंच पद होता है। जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाती है, ऐसे ही हर आत्मा का हिसाब किताब है। जिस आत्मा को जिस युग के आदि मध्य अंत में पार्ट बजाना है, जैसा पार्ट बजाना है वैसा पार्ट हर युग के लिए नुधा हुआ है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो 16,000 के राजाई कुल में तो आ जाएंगे, लेकिन न सतयुग में राजाई पावेंगे न त्रेता में राजाई पावेंगे। वो وہ صرف پرنس پرنسز بن کر کے رہ جائیں گے. تو دوابر کلیگ میں بھی کیا ہوگا, ان کو راجائی نہیں ملے گی, وہ صرف راجاؤں کے بچے بنتے رہیں گے بس. تو ایسے نہیں سمجھنا ہے کہ پرماتما باپ سے صرف 21 جنموں کا ورثہ ملتا ہے, نہیں, جیسا جیسا ورثہ 21 جنموں میں باپ سے ملتا ہے ویسا ہی ویسا پنراورتی دواپر کلیگ میں بھی ہوتی, 63 جنموں کا بھی وہ حساب بنتا ہے. بچے جانتے ہیں ہم ننگے آئے تھے, کہاں سے, باپ کے گھر سے جب ہم بچے آئے تھے ننگے آئے تھے, مانا دیہ ابھیمان کا کپڑا ہمارے اوپر نہیں تھا. پھر یہ دیہ ابھیمان کا کپڑا کس نے دیا ہے؟ مایا راون نے دیا, کب سے دیا, دواپر یوگ سے دیا. دو پور دوائت, دو دو متیں, دو سے چار, چار سے آٹھ, مت دینے والوں کی سنکھیا بڑھتی جاتی ہے. بابا کہتے ہیں اشریری بنو, اشریری بن کر کے باپ کو یاد کرو. کیا کوئی کہے کہ باپ بندو ہے اور ہم دیہ دھاری ہیں, ہم کھینچ کے بندو کو یاد کر لیں گے. تو دیہ بھان میں رہنے والوں کو بندو کی یاد نہیں آ سکتی, صرف یہاں بندو کو ہی یاد نہیں کرنا ہے, یہاں تو ساکار میں نراکار کو یاد کرنا ہے. تب تو سہج ہو گیا کیونکہ ہم ہیں ساکاری دیہ ابھیمان والے اور ہمارا باپ بھی ساکاری ہے, اس ساکار میں ہی نراکار جیوتی بندو پرویش کرتا ہے, تو بندو بننے کی کیا ضرورت. نہیں, جس ساکار میں نراکار جیوتی پرویش کرتی ہے اس کو پہلے اپنے آپ سمان بناتی ہے, وہ بھی نراکاری اسٹیج والا بنتا ہے. نراکاری اسٹیج میں کتنا بہت ضروری ہے, اگر نہیں سیکھے تو پرماتما باپ کی یاد آ نہیں سکتی. اشریری بن باپ کو یاد کرو, اس سے ہی بیڑا پار ہوگا. بیڑا مانا, بیڑا مانا جہاز, جہاز مانا ہے کون سا بیڑا, شریر روپی تو نیا کہی جاتی ہے, بیڑا مانا جہاز. بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی نوئیاں بھی رکھی ہوتی ہیں, تو ہم سب ہیں چھوٹی چھوٹی نوئیاں اور مقرر رتھ ہے جہاز, بیڑا. ہندوؤں میں سکھوں میں اس بیڑے کا بہت گائن ہے, شنکر چاپ جہاز یہی چڑھے اترے پار نر بوڑھ سکل سنسار. کیا جہاز کا آدھار نہیں لے گا, کیا اثر ہوگا, ڈوب جائیں گے, سمندر میں گوتے کھا جائیں گے اور ڈوب جائیں گے. اس لیے گرو نانک کے گرنتھ میں بھی بولا ہے, کیا بولا ہے, نانک چاپ جہاز. انہوں نے گرو نانک کو سمجھ لیا, اگر گرو نانک کا چاپ شریر روپی رتھ گرو نانک کے بعد گور کلیگ آ گیا, وکار اور ہی زیادہ بڑھ گئے, تو وہ بیڑا جو ہے وہ وشے ویترنی ندی کہو, وشے ساگر کہو, اس کو پار لے جانے والا ثابت ہوا, یا خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا. کوئی بھی دھرم پتا اس دنیا کا ادھار نہیں کر سکتا, یہ تو ایک شیو بابا ہی ہے. जो मुकर्र रथ में प्रवेश करके ऐसा जहाज तैयार करता है जिसका आधार लेकर के पतित आत्माएं इस विषय सागर से पार हो जाती है। तो बोला उसका तरीका क्या है, अशरीरी बनकर बाप को याद करो। कोई कोई कुमार कहते हैं कि हम तो कुमार हैं, बाबा कहते हैं मैं सजनी बनता नहीं हूं, मैं तो साजन हूं, बाबा कहते हैं अशरीरी बन जाओ। क्या कहते हैं, अशरीरी बन जाओ, ये भान भूल जाओ कि मैं कुमार हूं, मैं पुरुष हूं, आत्मा समझो। आत्मा समझ करे कि अगर बेड़ा का आधार लेंगे तो पार चले जाएंगे। सब आत्माओं का बाप एक ही है, बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो योग से भी कर्म विनाश होंगे। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। चोर डकैतों को याद करेंगे, बुद्धि से उनका साथ करेंगे, उन्हीं में बुद्धि का रमण करेंगे, तो कौन से गुण आ जाएंगे, चोरी डकैती को गुण आ जाएंगे। जो निराकारी स्टेज में रहने वाला निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप है उसको याद करेंगे, उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को याद करेंगे, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। हमको वापस जाना है। जितना हो सके हम वापस जावे निराकारी स्टेज में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जावे, तो क्या फायदा होगा। निराकारी स्टेज में निसंकल्पी स्टेज में जल्दी टिक जावेंगे तो फायदा क्या होगा, हमारी कर्मातीत अवस्था पहले बनेगी और हमारा नंबर माला में पहले हो जाएगा। परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। क्या कोई कहे हम जल्दी कर दे, जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद तो रखना पड़े, एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, क्या करो, जो मेरा संकल्प सो तुम बच्चों का संकल्प होना चाहिए। माने संकल्प मात्र में भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए, वाचा में विरोध की बात करना, बाप कुछ कहे और हम कुछ कहे, ये तो बड़ी बात हो गई। एक बाप के बच्चे हैं, बाप कहते हैं मन मना भव, ये बात कृष्ण थोड़े ही कहते हैं मन मना भव। बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे संकल्पों में समा जाओ, मेरे संकल्पों में समा जाओ। कौन सा बाप कहते हैं, निराकारी शिव ज्योति बिंदु, वो तो निसंकल्प रहने वाला है, वो तो कोई संकल्प चलाने वाला नहीं है। यहाँ नर से नारायण बनने वाले की बात है, इसलिए एक मुरली में कहा है कि सबसे अच्छा तरीका है पतित से पावन जल्दी से जल्दी बनने का, नारायण को याद करो, क्योंकि नारायण भी वही है, मुकर्र रथ भी वही है, प्रजापिता भी वही है, सुख का सागर भी वही है, शांति का सागर भी वही है, और ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य भी वही है। तो कृष्ण थोड़े ही कहते हैं कि मुझे याद करो, अगर कृष्ण कहे मुझे याद करो तो कृष्ण की जो गति होगी वो हमारी भी गति हो जाएगी। कृष्ण ने शरीर छोड़ा, माने ब्रह्मा की सोल ने शरीर छोड़ा, पुरुषार्थ करते करते तो हम सबका भी शरीर छूट जाएगा, फिर नई दुनिया कहां से आएगी। ये तो बाप है, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या कहा? सिर्फ ब्रह्मा द्वारा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, जरूर यहाँ होना चाहिए। कौन? प्रजापिता। सिर्फ ब्रह्मा की बात नहीं कही, प्रजा का पिता है, 500-600 करोड़ प्रजा का पिता है, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। ये है व्यक्त पतित दुनिया और वो है पावन दुनिया। जो पतित दुनिया है उस पतित दुनिया में पावन कोई नहीं हो सकता। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। झाड़ में देखो, ऊपर में खड़ा है और यहाँ नीचे तपस्या में बैठे। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हो। चौथा पेज, यह जाकर के फिर फरिश्ता बनते हैं। यह है कौन? ब्रह्मा। यह जाकर फिर फरिश्ता बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात, जब तक नहीं समझाई है तब तक और कुछ भी नहीं समझेंगे। कौन सी बात? कृष्ण है रचना और रचयिता है बाप। इसी बात में मेहनत लगती है। माया फट से बाप को याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं, बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। कैसी है? दुस्तर। दुस्तर क्यों कहा? दुह माने कठिनाई पूर्वक, बड़े दुख पूर्वक, और तर माना पार होने वाली। माना माया से पार हो पाना, माया से पार पाना, ये बहुत मुश्किल है। अगर चंबे में आ गए तो, अगर माया के चंबे में आए ही नहीं, माया रावण की मत माने ही नहीं, तो दुस्तर का सवाल ही नहीं। माया के तूफान कितने भी आवे परंतु तुम बच्चों को हिलना नहीं। चारों तरफ से आवाजें आने लग पड़े, लेकिन बाप क्या कहता है और चारों तरफ से आई हुई रावण माया की आवाजें क्या कहती है, उनमें अपनी बुद्धि को भरमाना नहीं चाहिए। वो माया के तूफान है। ये तूफान आते हैं और निकल जाते हैं। अगर उनमें हम उड़ गए, उन तूफानों में अपने को उड़ाई दिया, तो पद नीच हो जाएगा। तुमको हिलना नहीं है, ये है पिछाड़ी की स्थिति। क्या कि माया के चाहे कितने भी तूफान आए, लेकिन हम उनमें हिले नहीं। माया हमारी नवैया को डुलाए, लेकिन हम स्थिरियम रहे। तो माया हमारी नवैया को डुबो ही नहीं सकती। माया जरूर तुमसे रुस्तम होकर के लड़ेगी। क्या? अगर तुमने माया रावण की बात न मानी तो माया क्या करेगी? हैं? जैसे शक्तिमान सीरियल में वो बिल्ली दिखाई है, काली बिल्ली, कहते बिल्ली खंभा नोचने लग पड़ती है, तो माया फट से बाप की याद भुलाए दे। तो माया फट से बाप की याद भुलाए देती है। निश्चय से लिखते भी हैं, बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवे, परंतु तुम बच्चों को हिलना नहीं है। वो पिछाड़ी की सेज है। क्या कि माया हमको कितना भी हिलावे, लेकिन हम हिलेंगे नहीं। माया जरूर तुमसे रुस्तम होकर के लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिराई देगी। کیا 300 گرائے گی؟ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں, وہ بھیڑ بکریوں کی کیا وشیشتا ہوتی ہے؟ ایک جدھر چلے گی ساری ادھر ہی چل پڑے گی, ایک گڈھے میں جاوے گی تو ساری گڈھے میں جاوے گی. تو اگر ریڑھ بکری ہو کر کے چلتے رہے, ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے, اپنی بدھی نہیں چلائی, مننات منشی نہیں بنے, اس کی اولاد ہیں ہم. شاستر میں لکھا ہے منو کی اولاد منشی, منو برہما کو کہا جاتا ہے. تو منن چنتن کرنے والے برہما کی اگر ہم اولاد ہی نہ بنے اور مایا راون کے چمبے میں پھنستے رہے, جیسے وہ چلاتا رہا ویسے ہم چلتے رہے, تو کیا ہوگا انجام؟ ریڑھ بکری کی طرح پھٹ سے مایا ہم کو گرائے دے گی. مایا کیسے پکڑتی ہے؟ بکری کے کان دیکھے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں؟ کان بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں, پکڑ میں آ جاتے ہیں. کان سے پکڑتی ہے مایا, کان سے پکڑتی ہے. کیوں کان سے کیوں پکڑتی ہے؟ ہاں, جو کان ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ وشواس کر لیتے ہیں. بابا نے تو بتا دیا, بھارت واسیوں نے سنی سنائی باتوں سے درگتی پائی ہے, لیکن بچے بابا کی باتیں بھول جاتے ہیں, پھر بھی دوسروں کی باتیں سنتے رہیں گے. مرلی سے بابا کی باتوں کو ٹیلی نہیں کریں گے یا بابا سے ویریفائی نہیں کرائیں گے, پھر بھی مایا کے چمبے میں آتے ہیں. ویسے لوگ کہتے ہیں پہلے ساری بیماری باہر نکلے گی. کیا باپ ایسا ویدناتھ آیا ہوا ہے, بارہ شیولنگ گائے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک شیولنگ کا کیا نام ہے؟ ویدناتھ, بابا ویدناتھ. تو بابا ویدناتھ ایسی گیان کی دوائی گولی لے کر کے آیا ہوا ہے, جو گولی کھانے سے کیا ہوگا, پہلے ساری بیماری باہر نکلے گی. کیا ہے؟ ہاں, جو بھی 63 جنموں کی بیماری ہے کبھی بھی چوری نہیں کی ہوگی, وہ بھی اس جنم میں آ کر کے چوری کرنے لگ پڑے گی. تو ونڈر کھاتے ہیں, ارے اس گیان میں آ کر کے تو ہم اور نیچے گر گئے, یہ تو ضرور کوئی حرامی گیان دے رہا ہے, یہ گیان کوئی شیطان کے دوارا دیا جا رہا ہے, ہم تو چمبے میں پھنس گئے. بھگوان کچھ نہیں, بھاگو. باپ کہتے ہیں یہ 63 جنموں کی بیماری ہے, تم نہیں جان سکیں گے یہ کون سے جنم کی بیماری ہے. باپ نے تو بتا دیا یہ شوٹنگ کا چکر چل رہا ہے, ریہرسل چل رہی ہے. تو پہلے ساری بیماری باہر نکلے گی, اس میں گھبرانا نہیں ہے. مایا بھی طوفان بھی بہت آویں گے, جو الٹے کرم کرانے کے لیے پریرت کرتے رہیں گے. اگر ہم طوفانوں میں آ کر کے بہہ گئے اور الٹا کرم کر لیا تو نیچے گرنا نشچت ہے. جب تم پکے ہو جاؤ گے پھر مایا کا پریشر کم ہو جائے گا. کیا مایا دیکھی گا, ارے یہ تو جمی جمت نہ جمت گل محمد ہو گیا, یہ تو ہلتا ہی نہیں. وہ گمبد ہوتا ہے نا, نہانے جاتے ہیں تو گھاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں نہانے کی, سیڑھیاں وغیرہ, اور سیڑھیوں کے دونوں طرف گمبد بنے ہوتے ہیں, اس گمبد سے کودتے ہیں. ہاں, پوکھرا میں, تالاب میں, ندی میں, بانارسی میں وہ گمبد ہوتے ہیں. تو گمبد تو بہت استریم ہوتا ہے, اگر گمبد کی طرح استریم ہو گئے تو پھر مایا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی. پریشر بہت کم ہو جائے گا. مایا سمجھ جائے گی اب یہ ہلنے والا نہیں ہے, یہ کون ہے, یہ انگد ہے. اس نے انگ جو ہے وہ دے دیا ہے, انگ مانا انگ, بیکاروں میں پھنسانے والا انگ, اور دا مانا دے دیا. کس کو دے دیا؟ باپ کو ارپن کر دیا. کیا اب یہ انگد ہو گیا, اب یہ ہلنے والا نہیں ہے. جب ہلنے والا نہیں ہے تو مایا پیچھے کیوں پڑے گی؟ بابا ہی آ کر کے پتھر بدھی سے پارس بدھی بناتے ہیں. کیسی بدھی سے؟ پتھر بدھی بن گئے. جن انگوں کا اپیوگ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بار بار انہی انگوں کا اپیوگ کرتے ہیں. باپ آ کر کے سمجھاتے ہیں, بچے اب تم انگد بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ انگد بن جاؤ تو پتھر بدھی سے پارس بدھی بن جائے گی. پتھر بدھی, پتھر کیسا ہوتا ہے؟ پتھر بہت جڑجڑی بھوت ہوتا ہے, بہت کٹھور ہوتا ہے. جو پتھر بدھی ہوتے ہیں ان کی بدھی میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں, اندر اندر سمجھتے بھی ہیں یہ غلط ہے, یہ کام اچھا نہیں ہے, دکھدائی کام ہے, لیکن مانیں گے نہیں. سارا گیان اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیں گے, بدھی پتھر آ جاتی ہے اس سمے. باپ کہتے ہیں میں پتھر بدھی کو پارس بدھی بنانے کے لیے آیا ہوا ہوں, یہ بڑی رمڑی کا نالج ہے. کیسی نالج ہے؟ ہاں رمڑیک, بہت پرسن کرنے والی ہے. بھارت کا پراچین راجیوگ گایا جاتا ہے, یہ تم بچے ہی اچھی طرح جانتے ہو. اچھا میٹھے میٹھے سکیل دے بچوں پرتی, کیا کڑوی کڑوی باتیں کرنے والوں بچوں کے پرتی نہیں؟ جن کے مکھ میں کڑواپن بھرا ہوا ہے ان کو نہیں آج پیار دے رہے, کیسے بچوں کے پرتی؟ میٹھے میٹھے بچوں کے پرتی جن کے مکھ سے گیان رتن ہی نکلتے رہتے. کیا وکاروں کی کڑوی باتیں جن کے مکھ سے کبھی نہیں نکلتی ہیں, وکاری وائبریشن چھوڑنے والی باتیں نہیں نکلتی ہیں, ایسے میٹھے میٹھے یعنی تو آتما بچوں کے پرتی, مات پتا ایک کا نہیں, ماتا کا بھی اور پتا کا بھی, باپ دادا کا, ایسے نہیں صرف مات پتا کا. مات پتا جب کہتے ہیں تو الگ الگ شبد ہیں, الگ الگ ویکتتو ہیں, پرسنالٹی الگ الگ ہے, ایک میل ایک فیمیل. مات پتا کا اور باپ دادا کا, مات پتا کہہ دیا پھر باپ دادا کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ مات پتا الگ الگ شریر دھاری ہے اور باپ دادا ایک ہی شریر کے اندر باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے. دادا کون؟ برہما کی سول, کرشن کی سول, جو بچوں میں بڑا بھائی ہے. بچوں میں سب سے بڑا بچہ کون سا؟ کرشن بچہ, سب سے شریشٹھ بچہ. تو بڑا بھائی مانا دادا, مانا باپ رام اور دادا کرشن, وہ ایک ہی شریر میں دونوں ہیں. وہ کون سا روپ گایا ہوا ہے جس میں دونوں وراجمان ہیں؟ شنکر کا جو روپ ہے اس میں اردھ چندر بھی وراجمان ہے. چندرما کا پارٹ بجانے والی کون سی سول؟ برہما کی سول, اور رام والی سول. یہ دونوں ہی سول ایک ہی شریر میں کاری کرتی ہیں, اور شیو بابا تو ان کے ساتھ ہے ہی. تو مات پتا باپ دادا کا یاد پیار دونوں روپ یاد بھی دیتے ہیں اور بچوں کو پیار بھی دیتے ہیں. کیسے بچوں کو؟ کڑوے مکھ والے بچوں کو نہیں, میٹھے میٹھے سکیل دے بچوں پرتی. سکیل دے کیوں کہتے ہیں؟ جو بہت دن کے بعد ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں سکھ. سکھ سکھ مانا پیار, سکیل دے مانا بہت لمبے سمے کے بعد جب ملتے ہیں تو بڑے پیار سے ملتے ہیں. جیسے کوئی بچہ کھو جائے, کسی کا بچہ ماں باپ کا کھو جائے اور کھو جانے کے بعد اس کی ملنے کی آسا ہی جاتی رہی, روتے روتے ماں کی آنکھیں ہی پھوٹ گئی, اور بہت سمے کے بعد پھر اچانک وہ بچہ مل جائے کہیں بھی تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی. تو بولا سکیل دے بچوں پرتی, بہت دنوں کے بعد بچھڑ کر کے ملے ہوئے بچوں کے پرتی ماتا پتا باپ دادا کا یاد پیار گڈ مارننگ. بابا شیو بابا کرتے ہیں گڈ مارننگ, اور برہما بابا گلزار تن میں آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ گڈ نائٹ. یہ پہچان ہے برہما کی سول اور شیو بابا کی سول میں. بابا کہتے ہیں گڈ مارننگ, گڈ مارننگ مانا ستیہ گرو کی سویرا آ رہا ہے, روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے. یہ سب سے الگ ہو گیا, نہ ماتا پتا ہے نہ باپ دادا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ صرف روحانی باپ, روحوں کا باپ, شیو باپ, سپریم سول. وہ روحانی بچوں کو نمستے کرتا ہے. کیا دے ابھیمانی بچوں کو, دے ابھیمانی سانڈوں کو گھاس نہیں ڈالتا, ان کو نمن نہیں کرتا ہے. کس کو کرتا ہے؟ روحانی باپ روحانی بچوں کو نمستے کرتے ہیں.
حضرت وانی چل رہی تھی 23/10/99 کی, پانچویں پیج کا مدھیا دی. بات چل رہی تھی کہ باپ دادا تو آپ کے پتر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو یاد پیار دے دیتے. جب آپ بچے لکھتے ہیں سنکلپ کرتے ہیں تو جیسے یہاں سائنس کے سادھن ہیں اس میں جلدی سے پہنچ جاتا ہے, پتر پیچھے پہنچتا ہے, سب سے فاسٹ ای میل پہنچتا ہے. تو ای میل دینا شروع کرتے ہو اس سے پہلے باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ سب سادھن آپ بچوں کی سیوا کے سہیوگ کے لیے نکلے. کیا چاہے ٹی وی نکلی ہے, چاہے ٹیپ ریکارڈ نکلا ہے, چاہے ای میل کی سیوا نکلی ہے کمپیوٹر کے دوارا یا کمپیوٹر نکلا ہے, ان سب سادھنوں سے آپ کی سوریہ سیوا ہوگی. تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ بچے واہ, اتنا سہج سادھن برہما باپ کو بھی ساکار میں نہیں ملا, گھر گھر جا کر کے گھومنا پڑا. اتنا سہج سادھن برہما باپ کو بھی ساکار میں نہیں ملا لیکن بچوں کے پاس ہے, تو زیادہ بھاگیوان کون ہوئے؟ خوش ہوتے ہیں. صرف سیوا کا سادھن سمجھ کر یوز کرنا, سیوا کے لیے سادھن ہے کیونکہ وشو کلیان کرنا ہے, تو یہ بھی سادھن سہیوگ دیتے ہیں. ان سادھنوں کے وشیبھوت نہیں ہو جانا, لیکن سادھن کو سیوا میں یوز کرنا. یہ بیچ کا سمے ہے جس میں سادھن ملے ہیں. کیا کہا؟ یہ بیچ کا سمے ہے جس میں سادھن ملے ہیں, مانا آگے چل کر کے لاسٹ میں کیا ہوگا, یہ سادھن بھی نہیں رہیں گے. آج میں بھی کوئی سادھن نہیں تھے, اتنی توڑ پھوڑ ہو جائے گی. آج میں بھی سادھن نہیں تھے اتنے, اور انت میں بھی نہیں رہیں گے. تو یہ سادھن ابھی کے لیے ہیں, बाकी जो लास्ट में आए हुए बच्चे हैं जिनको कम समय मिला है वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके और ऊंचे ऊंचे नंबर ले सके, उनको ये उलहना ना हो जाए, न रह जाए कि हम तो बाद में आए हैं इसलिए हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाप दादा सब बच्चों को पूरा चांस देते हैं। तो ये सभी साधन आपके लिए हैं, सेवा बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन साधन हैं, साधना करने वाले आप हो, साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के, फटाफट कर रहे हैं काम, क्या इंटरनेट से तो सेकंड में सारे विश्व में फैल जाता है, क्या ईश्वरीय संदेश, क्या ईश्वरीय संदेश कि ईश्वर बाप प्रैक्टिकल में साकार शक्ति पर साकार तन से आया हुआ है। बाप दादा आपके ऑफिस का भी नक चक्कर लगाते हैं, जो ईमेल का ऑफिस है उस ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं कि बच्चे कैसे काम कर रहे, बहुत बिजी रहते हैं ना, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना, जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, क्या ऐसे नहीं आत्म की स्थिति गायब हो जाए और साधनों में ही लगे रहे, सेकंड भी निकालो। अभी साधन पर हाथ है और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो, अभी अभी साधनों में है, व्यस्त है, बिजी है और अभी अभी एक सेकंड निकालो किसके लिए, आत्म की स्थिति के अभ्यास के लिए। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो, ऐसे नहीं टाइम ही नहीं मिला सारा दिन बहुत बिजी रहे, ऐसे नहीं। बाप दादा ये बात नहीं मानते कि सारा दिन बिजी रहे और एक सेकंड का भी आत्म की स्थिति का टाइम नहीं मिला, क्या एक घंटा साधन को अपनाया उसके बीच में क्या पांच छह सेकंड भी नहीं निकाल सकते हो, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट और सेकंड कितने, सेकंड और ज्यादा हुए कहूंगे 3600 सेकंड हुए, तो 3600 सेकंड लगाया किसमें, साधनों में और साधनों की सेवा में, अपने को बिजी रखा तो सिर्फ 5-6 सेकंड नहीं निकाल सकते, कितना परसेंटेज हुआ। ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके, ऐसा कोई है, निकाल सकते हैं ना पांडव, बोलो नहीं बोलते हो तो निकालो। बाप दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिजी बहुत बिजी, सकल ही बिजी की कर देते हैं, बाप दादा मानते नहीं, जो चाहे वह कर सकते हो, अटेंशन कम है, जैसे वह अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है इसलिए बिजी हो जाते हो ना टाइम के कारण, ऐसे ही सोचो 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो टाइम टेबल बनाते हो ना, इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो कि 1 घंटा ईमेल की सेवा में लगाएंगे तो उसमें से 5 मिनट जरूर निकालेंगे, किस बात के लिए, आदमी की स्थिति पक्की करने के लिए, इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो, 8 मिनट लगना है 6 मिनट नहीं, 8 मिनट लगना है तो 2 मिनट साधन में लगाओ, नहीं साधना में लगाओ, ये हो सकता है ना। गायत्री से पूछा, किसे पूछा, गायत्री, गायत्री मालूम कौन है, हैं? मोदी परिवार की। कौन से परिवार की? मोदी। पूरे परिवार को मोड़ने वाली है कौन? गायत्री। तो अभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना, बहुत बिजी है, बहुत बिजी। बाप दादा उस समय चेहरा भी देखते हैं, फोटो निकालने वाला चेहरा होता है इस समय, जब कहते हैं कि हम साधनों में बहुत बिजी हैं। कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ जाता है। बुद्धि भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना, वो दूर हो जाएगी। खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं होती है। काम में लग जाते हो, बाप दादा तो कहते हैं काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो। कैसे कॉन्शियस? एक्शन कॉन्शियस माने कार्य में बिजी रहने के कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, ऐसे है ना? एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती है, कर्मणा सेवा की मार्क्स वो तो मिलती है, व्यस्त तो नहीं जाता है, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क्स और एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स, इन दोनों बातों में अंतर तो हो जाता है ना, फर्क होता है ना, तो अभी बैलेंस रखो। कौन कौन सी बातों का? सोल कॉन्शियस की मार्क लेने में और एक्शन कॉन्शियस की मार्क लेने में बैलेंस रखो, लिंक को तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो। कौन सा लिंक? आत्मिक स्थिति का लिंक तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशी काम करने में भी डबल बिजी रहते हैं। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस रखो, जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, लेकिन निकालो जरूर। हो सकता है पांडव बताओ, हो सकता है टीचर्स बताओ, हो सकता है और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको हो सकता है। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, भारत वालों ने जो भी प्लान्स बनाए हैं वो भी अच्छे प्लान्स बनाए हैं। दोनों के अपने अपने वायुमंडल अनुसार प्लान तो अच्छे हैं। जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा, उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा है, बाप दादा को स्वीकार हुआ, और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे। अच्छा, एक सेकंड में उड़ सकते हो, ऐसे पंख पावरफुल हैं। पंख कौन से? ज्ञान योग के पंखों से एक सेकंड में उड़ सकते हो, बस बाबा कहा और उड़ा। बाप दादा ने ड्रिल कराई, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर ही रहने वाले परमात्मा सेवा के साथ ही बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले बच्चों को सदा बाप के स्नेही समान समीप बाप दादा के नैनों के तारे सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले मधुवन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। इंटरनेशनल मीटिंग ग्रुप से मुलाकात, एक एक रतन बहुत बहुत वैल्यूफुल है। बाप दादा सदा एक एक रतन की विशेष आत्माओं की माला जपते रहते हैं। विशेषताएं हैं तभी तो विशेष आत्माएं गाई हुई हैं। सिर्फ उन विशेषताओं को सदा कार्य में लगाते रहो। बाप दादा हर एक की विशेषताओं की माला दोहराते रहते हैं और यही गीत गाते हैं, वाह मेरे विशेष रतन वाह। इसलिए कहा ना कि बाप दादा सदा याद में रहते। किसकी याद में? बच्चों की याद में। बच्चे महान हैं और अपनी महानता से विश्व को महान बनाने वाले। कितनी महिमा है। जैसे बच्चे बाप की महिमा करते हैं वैसे बाप भी हर बच्चे की महिमा करते हैं। बाप की महिमा करने की सिमरनी कौन सी है? बच्चों की महिमा सिमरण करने की कोई बाप के पास माला है? कौन सी माला है? रुद्र माला। रूहानी रसा नशा रहता है ना उसको। रुद्रमाला के बच्चों को रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि रुद्रमाला में क्या दिखाया जाता है? मुख ही दिखाया जाता है। मुख माने जहाँ विशेष रूह बैठी हुई है, कर्म इंद्रियां नहीं बैठी हुई है। मुख में कौन सी इंद्रियां बैठी हुई है? ज्ञान इंद्रियां बैठी हुई है। जो मुख ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान से भरपूर रहता है, तो ऐसे बच्चों की महिमा करते हैं, रूहानी नशा रहता है ना। सदा अपन को निमित्त विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। हीरो हैं, सभी हीरो हैं। बाप दादा तो हर एक बच्चे से सारे दिन में अनेक बार मिलता रहता है। मिलता है ना? हर एक का एक्ट देख करके खुश होते रहते हैं। अच्छा अच्छा पार्ट बजाने वाले हैं ना, तो बाप दादा भी सदा बहुत अच्छा यही गीत गाते रहते हैं। बहुत अच्छे हैं ना? अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे, गारंटी है ना? अच्छे रहने वाले ही हैं, रहेंगे ये पूछने की नहीं है। क्वेश्चन है क्या? अच्छे रहेंगे ये बात पूछे क्या? नहीं, रहना है और रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा संगठन। ओम शांति।